ओम शांति। कर्म योगी जीवन प्राप्ति योग का जीवन, हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कर्म योगी बनना। जब हम कर्म योगी बनते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्थिति कर्मातीत स्थिति की ओर अग्रसर होती रहती है। कर्म और योग साथ साथ होना जरूरी है। बाबा ने कहा है, मेरे जो महावीर बच्चे हैं वो कर्म और योग साथ साथ करने की क्षमता वाले होते हैं, क्योंकि कर्म में योग होने से कर्मों में दिव्यता आती है, योग में कर्म करने से कर्म हमारे यादगार बन जाते हैं। इसलिए कर्म और योग साथ साथ करना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं अमृत वेले और नुमा शाम के समय तो योग आप करते हैं, लेकिन जैसे कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं। अभी हमें कर्म और योग साथ साथ लेकर चलना है। कई समझते हैं कर्म जो हाथ से हम कर्म करते हैं वही कर्म होते हैं, वही सेवा होती है, लेकिन जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों से जो हम कार्य करते हैं उनको कर्म करते कहते हैं। देखना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। तो ऐसे तो हम 24 घंटे कर्म करते हैं, अर्थात हमें निरंतर योग युक्त रहने का अभ्यास करना जरूरी है। तो कर्म योगी सदा बनकर रहे सारे दिन भर में, उसके लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बातें आपको मदद जरूर करेगी कर्म योगी स्थिति आगे बढ़ने के लिए। वो बातें आपको मददगार साबित होगी और आपकी स्थिति आगे ही आगे बढ़ती रहेगी। पहली बात, कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए हमें कर्म कॉन्शियस भी नहीं बनना है, रोल कॉन्शियस भी नहीं रहना है, लेकिन सोल कॉन्शियस बनना है। कर्म कॉन्शियस होने से कर्म में ही हम लिप्त हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस होने से हम न्यारे प्यारे रहते हैं, रोल कॉन्शियस होने से भी कभी कभी अभिमान आने की संभावना होती है, मैं बड़ा ये छोटा, ये उससे छोटा ये बड़ा। तो ये जो अभिमान आने की संभावना होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें सोल कॉन्शियस बनकर कर्म करते जाना है। मैं आत्मा अपने हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूं, ये आत्मा अपने पैरों के द्वारा चल रही है, ये आत्मा कानों के द्वारा सुन रही है, ऐसा हमें अंदर ही अंदर अभ्यास करना जरूरी है। तो देह में रहते हुए कर्म करते हुए विदेही स्थिति का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। देह समझने से हम जल्दी थक जाते हैं, आत्मा समझने से हम थकते नहीं हैं, क्योंकि आत्मा तो एक शक्तियों का पुंज है। तो हमें देखना है, चेक करना है कि सारे दिन भर मैं सोल कॉन्शियस स्थिति में रहूं। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी एक बार बीमार पड़ गई थी, क्योंकि बहुत बिजी रहती थी, सारा दिन बिजी रहती थी। कोई बड़ा ग्रुप आया था मधुबन में, तो दादी जी की तबीयत बिगड़ गई थी, बुखार आया था। तो बाबा से दो दिन के बाद में मिली, तो बाबा ने कहा एक युक्ति को अपनाओ, कर्म करते करते बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहो, क्योंकि हमें गैप जरूर मिलती है। एक ग्रुप समझो उठकर जा रहा है और दूसरा ग्रुप आपसे मिलने आ रहा है, थोड़ी सी गैप जरूर है। उस थोड़े से समय में अशरीर स्थिति का इंजेक्शन लगाओ, तो उस इंजेक्शन से आपको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा के कारण आपको थकावट नहीं आएगी। तो दादी जी ने उस युक्ति को अपनाया और बहुत अच्छी तरह से उनको मदद मिली। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी होते हैं, वो बीच बीच में सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे हमें भी बीच बीच में घड़ी दो घड़ी के लिए अशरीर स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाना है और स्वयं को एनर्जाइज करना है, आत्मा में शक्तियों की अनुभूति करते जाना है, तो थकावट नहीं आएगी। दूसरी बात, कर्म योगी बनने के लिए आवश्यकता है साक्षी दृष्टा होकर कर्म करने की। जो भी हमारे कर्म साथी होते हैं उनसे भी हमें साक्षी दृष्टा होना है, अपने रोल से भी साक्षी दृष्टा होना है और इस बेहद के ड्रामा से भी साक्षी दृष्टा होकर रहना है, क्योंकि साक्षी होते हैं तभी बाबा को साथी अनुभव कर सकते हैं, बाबा की याद सहज आ सकती है। तो जैसे शिव बाबा परम धाम से, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से इस बेहद ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, बिल्कुल न्यारे प्यारे होकर इस ड्रामा को देखते हैं, ऐसे हमें भी अपने रोल को और सभी के रोल को साक्षी होके देखना जरूरी है। जब साक्षी दृष्टा बनते हैं तो बाबा को साथी सहज अनुभव करने लगते हैं, बहुत आनंद आता है इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखने से। तीसरी युक्ति, कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए हमें जिम्मेदारी के बोझ से स्वयं को हल्का रखना जरूरी है। लौकिक जिम्मेदारी हो चाहे अलौकिक जिम्मेदारी हो, उससे हमें हल्का रहना है, क्योंकि जब मन बुद्धि हल्की रहती है तभी ऊपर बाबा की ओर जा सकती है और बाबा की याद में हम टिक सकते हैं। तो जिम्मेदारी का बोझ सब पर होता है, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट और हल्का अनुभव करना है। बाबा कहते हैं मुझे अपना बोझ दे दो, लेकिन हम बाबा को बोझ दे भी देते हैं लेकिन बाबा से पुनः वापस ले लेते। क्यों लेते हैं भाई? जब भगवान को जिम्मेदारी का बोझ देते हैं तो वापस लेना नहीं चाहिए, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं बाबा मुझे इस कार्य में मदद करेंगे या नहीं। वो संशय होने से जिम्मेदारी वापस लेते और चिल्लाते रहते हैं योग मेरे लिए कठिन है। इसलिए हमें जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। मैंने देखा प्रकाशमणि दादी जी के साथ मैं मधुबन में 30 वर्षों तक रहा। मैं दादी जी को देखता था और दादी जी के जीवन से मैंने कई बातें डायरेक्ट सीखी, बहुत मुझे मदद मिली। ब्रह्मा बाबा तो नहीं देखा, 72 में ज्ञान में आया, लेकिन प्रकाशमणि दादी जी ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी थी। तो दादी जी को एक बार मैंने प्रश्न पूछा, दादी जी आप इतना यज्ञ का कारोबार लेकर चल रही हैं, 6,000-7,000 सेवा केंद्र की जिम्मेदारी आप संभल रही हैं, मधुबन के इतने कारोबार चला रही हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन या चिंता का चिन्ह नहीं देखा, क्या इसका सीक्रेट है वो बताइए? क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। तो दादी जी ने कहा देखो पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं, करण करावनहार बाबा है, मैं केवल कठपुतली हूं, मैं अपनी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में देती हूं, बाबा जैसे मुझे नचाते हैं, जो मेरे से सेवा कराते हैं वो मैं करती हूं, मैं कुछ नहीं करती हूं। दूसरी बात, हमेशा मेरे एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा, दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ साथ रहते हैं, जिसके कारण कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, उनकी मदद से वो समस्या चुटकी में पार हो जाती थी, तो मैं क्यों स्वयं को बोझिल अनुभव करूं? बाप का काम ही है बच्चों को मदद करना, नहीं तो वो बाप किस काम का भाई? तो बाबा कहते हैं मैं आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप एक कदम उठाओ तो मैं 1,000 कदम उठाने के लिए आपको तैयार हूं मदद करने के लिए, ठीक है? और कोई अनहोनी बात होती है या कोई नई बात होती है तो हमें टेंशन होता है, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं सकूंगा, पहली बार कर रहा हूं। लेकिन पहली बार हम कोई भी काम नहीं करते हैं, जो भी कर्म करते हैं हमने अनगिनत बार किया है, केवल ये रिपीटेशन है। इसलिए हमें ये सोचना है जो भी दर्श हो रहा है, आ रहा है, ये केवल नथिंग न्यू है, केवल रिपीटेशन हो रहा है, तो हल्के हम रहते हैं, ठीक है? तीसरी बात, तीन हो गई ना, चौथी बात, कर्म योगी जीवन बनने के लिए सदा स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास करते रहना है। स्वमान के टाइटल रूपी टॉय को पहनकर ही हमें सेवा के क्षेत्र में उतरना है, क्योंकि जब स्वमान में स्थित होते हैं तो हमें ईश्वरीय नशे की, ईश्वरीय खुशी की अनुभूति होती है और उसका प्रभाव हमारे कर्मों पर बहुत पॉजिटिव पड़ता है। क्योंकि कर्म जब हम करते हैं तो तीन बातों का प्रभाव होने की संभावना होती है। जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है, जो हमारे कर्म साथी होते हैं उनके स्थिति का प्रभाव उन पर पड़ सकता है, तीसरा जो वायुमंडल वहां का होता है उसका प्रभाव भी आत्मा पर पड़ सकता है। लेकिन जब समान में स्थित होकर कर्म करते हैं तो तीनों बातों के प्रभाव से हम निर्लिप्त रहते हैं और बाबा की याद करने के लिए हमें बहुत सहज अनुभव होता है। तो समान सदा रहें कि मैं खुदाई खिदमतगार हूं, खुदा ने मुझे ये सेवा दी, खिदमत दी है, उनकी याद में रहकर मुझे ये सेवा करनी है। कोई भी समान का टाइटल आपको अच्छा लगता है उसका अभ्यास करना है और नशे में मस्ती में अलौकिक मस्ती में मस्त रहकर कर्म करना है। ऑफिस में दूसरे भी लोग जाते हैं लेकिन आप ऑफिस में आप भी जाते हैं, लेकिन ऐसा समझना है आपको बाबा ऑफिस में फरिश्ते के रूप में भेजते हैं वहां के वायुमंडल को पॉजिटिव बनाने के लिए, चार्ज करने के लिए बाबा आपको वहां भेजते हैं। इसलिए कर्म करते हुए हमें ऐसा सोमान का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे साथी होते हैं वो अनुभव करते ये व्यक्ति कुछ अलग ही व्यक्ति है, पता नहीं बहुत न्यारा प्यारा रहता है, शांत होकर रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, कार्य पूरा करता है लेकिन न्यारा प्यारा होकर करता है। तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति का प्रभाव साथियों पर जरूर पड़ता है और वो हमें रिगार्ड की दृष्टि से देखते हैं। पांचवी बात, कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए कर्म क्षेत्र में सदा टकराव से स्वयं को बचाकर रखें, क्योंकि अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले लोग होते हैं कर्म क्षेत्र में हमारे साथ में, तो हो सकता है कभी आपस में संस्कारों का टकराव हो जाए। लेकिन हमें एक बात याद रखना है, जहां टकराव वहां स्थिति का बिखराव हो जाता है, क्योंकि हमारे में मन में व्यर्थ संकल्पों का, नकारात्मक संकल्पों का तूफान उठता है अगर टकराव होता है तो, और उसके कारण आत्मा की बहुत कुछ शक्तियां नष्ट होती है। इसलिए टकराव से हमें स्वयं को बचाकर रखना है। अगर रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर होगा तो उससे आप टकराएंगे नहीं, आप अपना बाजू में रास्ता निकाल कर जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें तीन सेवक सदा साथ में रखने हैं, धैर्य, शांति और स्नेह। ये तीन सेवक अगर आपके पास होंगे तो कभी भी किसी के साथ टकराव आपका नहीं होगा। धैर्यता को कभी हमें छोड़ना नहीं है, शांति को कभी भंग होने नहीं देना है और स्नेह को भी हमें कम होने नहीं देना है। ये परिवार बाबा ने स्नेह के धागे से बांधा हुआ है। स्नेह का धागा कमजोर ना हो लेकिन स्नेह का धागा मजबूत हो, इसलिए स्नेह हमारा बढ़ता चले। स्नेह हमारा कब बढ़ता है साथियों के साथ, हाँ जी, और कब घटता है बताइए। साथी हमारे साथ हैं लेकिन उनसे स्नेह हमारा बढ़ता रहना चाहिए, लेकिन कब बढ़ता है, हाँ, जब हम उनकी विशेषता देखते हैं, कोई ऐसा गुण देखते हैं, कोई ऐसी कला देखते हैं, तो न चाहते हुए उस आत्मा के प्रति हमारे दिल में स्नेह पैदा होता है, बढ़ता है। और जब उसकी कमी देखते हैं, कमी तो सब में है, विशेषता भी सब में है, जब उसकी कमी हम देखते हैं तब हमारा स्नेह घटता है, काम होता है उस व्यक्ति के प्रति। तो हमें क्या करना है, सेवा क्षेत्र में सबकी विशेषताएं देखने की आदत पक्की करनी है। किसी की कोई अवगुण कहो कमी हमें देखना ही नहीं है। अवगुण रूपी कचड़ा, कमी रूपी कचड़ा हम अपने बुद्धि रूपी डस्टबिन में अगर रखेंगे तो ये बुद्धि हमारा किचड़े का डब्बा बन जाएगी। जहां किचड़े का डब्बा होता है वहीं जंतु रोग वगैरह सब कुछ होते हैं, है ना भाई। तो इसलिए हमें सबकी विशेषता देखना है। जैसे मधुमक्खी हर फूल से मधु ही लेती है, ऐसे हमें हर रूहे गुलाब से आत्मा से विशेषता ही ग्रहण करना है। ऐसा हमारा अभ्यास होता है तो ऑटोमेटिक उनके प्रति हमारे दिल में स्नेह बढ़ता है, ठीक है। छठवीं बात, कर्म योगी बनने के लिए हमेशा ऐसा समझना है मैं अवतरित फरिश्ता हूं, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए सूक्ष्म वतन से अवतरित हुआ हूं। जैसे कर्म पूरा होगा तो मैं अपने घर वापस जाऊंगा। तो अवतरित फरिश्ता अनुभव करना माना स्वयं को न्यारा अनुभव करना। अवतार जो होता है ना वो न्यारा होता है। तो मैं कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूं, वहां से आया हूं सूक्ष्म वतन से, और कर्म पूरा होने के बाद मैं वापस जाऊंगा। तो ऐसा स्वयं को समझते हैं तो बहुत हम सभी से डिटैच रहते हैं, सबसे न्यारे रहते हैं और बाबा के प्यारे अनुभव करते हैं। फरिश्ता माना ही भगवान के साथ सारे रिश्ते अनुभव करने वाला, किसी व्यक्ति वैभव के साथ उसके बुद्धि का रिश्ता नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा फरिश्ते के पैर हमेशा धरती से ऊपर उठा के दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, कि धरती से टच किए हुए कभी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो धरती से डिटैच है, न्यारा है, उपराम है और परमात्मा के साथ उसकी तार जुटी हुई है। एक बार बाबा हमसे मिल रहे थे मधुबन निवासियों से इसी हॉल में, 86 की बात है। तो बाबा ने कहा मधुबन में आप तो बहुत साधारण काम करते हो, भोजन बनाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, ये छोटे मोटे ही साधारण काम करते हो, कोई बड़ा काम तो यहां ही नहीं। लेकिन साधारण कर्म करते हुए भी स्थिति आपकी असाधारण हो, कोई आपको खिड़की से देखे या दरवाजे से देखे तो वो अनुभव करे कि ये महान हस्तियां है, ये होनहार देवताएं हैं, ये कितना साधारण कर्म कर रहे हैं लेकिन कितनी स्थिति इनकी असाधारण है। क्योंकि ये सिद्धांत है, जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, कोई अगर हमारे तरफ देखता है तो हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन उसके मानस पटल पर स्वतः ही होता है। यह नियम है, यह सिद्धांत है। अगर हमारी आंतरिक स्थिति फरिश्ता स्थिति होगी, महान स्थिति होगी, तो देखने वालों पर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमें बाबा की याद भी बहुत सहज रहेगी। कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, सारा मदार स्थिति पर है। सेवा आप क्या कर रहे हैं उसका महत्व नहीं है, लेकिन सेवा कैसी कर रहे हैं, सेवा कोई भी सेवा स्नेह युक्त और योग युक्त करते हैं तो हमें उसमें 100 मार्क्स मिलते हैं। योग युक्त भी और स्नेह युक्त भी, हम मजदूर नहीं हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, ये यज्ञ हमारा है। जैसे मजदूर 8 घंटे यो सेवा करता है और पैसा लेता है चला जाता है, न्यारा होकर काम करता है, लेकिन ये हमारा घर है, बाबा का यज्ञ माना मेरा यज्ञ है, तो इसको अपनापन समझकर ही संभालना है। यज्ञ स्नेह हमारे दिल में सदा बढ़ता रहे, ठीक है। तो अवतार समझना है। दूसरा सातवीं बात है, हमें श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाते रहना है। कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए मुझे श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना है, क्योंकि ये खाता हमारे साथ चलता है। श्रेष्ठ कर्मों का खाता श्रेष्ठ संस्कार के रूप में हमारे साथ चलता है, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाने के लिए एक युक्ति हमें अपनाना है। लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने बैठना है और हमें अनुभव करना है, क्या मेरे स्थूल और सूक्ष्म कर्म इनके जैसे हैं? अगर नहीं है तो मुझे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म कैसे किए? कमल आसनधारी बनकर इन्होंने कर्म किए हैं। हमें भी कमल आसनधारी बनकर, न्यारा प्यारा बनकर कर्म करने हैं, तो हमारे श्रेष्ठ कर्म बढ़ते जाएंगे और श्रेष्ठ कर्मों का खाता हमारे पास बढ़ता जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम औरों को प्रेरणा भी दे सकते हैं ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की। इसलिए कर्म हमारे साधारण ना हो, क्योंकि हम विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, इसलिए हमारे कर्म भी विशेष हो और कर्म भी महान हो, साधारण न हो। तो कर्मों का खाता हमारा बढ़ता जाएगा। अभी आठवीं बात, कर्म योगी जीवन बनने के लिए हमें कर्म के फल की आशा नहीं रखना है। कर्म किए जा, कर्म की इच्छा मत कर, ये इंसान, यही है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा, कर्म के फल की इच्छा मत कर, ये इंसान, यही है गीता का ज्ञान। अगर कर्म का फल मुझे क्या मिलने वाला है वो फल बुद्धि में रखेंगे तो बुद्धि हमारी बाबा से किनारा करती है, योग सहज नहीं लगता है, क्योंकि वो फल में बुद्धि रहती है, ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा। जो मैं कर्म करूंगा उसका फल तो मुझे मिलना ही मिलना है। एक बार जो मैंने सेवा की वो भगवान के रजिस्टर में नोंद हो गई तो उसका फल किसको मिलेगा? मुझे ही तो मिलेगा ना। इसलिए कर्म हमें करते जाना है श्रेष्ठ, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना है, समझा? क्योंकि फल की इच्छा करने से मन और बुद्धि की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और कार्य दक्षता धीरे 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 घटने लगती है, और फल से हम डिटैच हैं तो कर्म में पूरा अटेंशन रहेगा और बाबा की याद भी रहेगी और कर्म हमारे श्रेष्ठ हो गए, समझा? तो फल की हमें आशा नहीं रखना है कर्म करते समय। नवी बात, कर्म योगी जीवन बनाने के लिए हमें अपना नेचर इजी बनाना है, जितना बिजी उतना इजी। क्योंकि बाबा ने कहा है आगे चलकर आप बहुत बिजी हो जाने हैं, सेवा कम नहीं होनी है, सेवा 50 क्या 100 गुना बढ़नी है। तो हमें सरलता को अपनाना है, इजी नेचर। एक स्लोगन याद रखना है, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। आप सरलता में रहो और इजी ले लो। आप सीरियसली लेंगे तो उसका टेंशन होगा और उसमें बाबा की याद नहीं रहेगी, और छोटी मोटी बातों में डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इजी नेचर होगा तो डिस्टर्ब होगे भी नहीं और डिस्टर्ब करेंगे भी नहीं, समझा। तो लोग कहते हैं ना आप बहुत इजी रहते हो। अभी इस कंप्यूटर एज में क्या है, छोटे से लेकर बड़े के बुद्धि में एक ही बात भर के रखी है कंप्यूटर एज ने, क्या, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। छोटे से लेके बड़े के दिमाग में एक ही बात बिजी भरी है, मैं बहुत बिजी हूं। बिजी नहीं है वो जाके उधर जाके गप्पे मारेंगे, फिर कहेंगे मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं बहुत बिजी हूं ये बोझ का पत्थर हम अपने मन और बुद्धि पर रखते हैं, तो वो बोझ का पत्थर हमारे मन और बुद्धि की क्षमता को, कार्य क्षमता को घटाता है। आपके सिर पर 10 किलो का बोझ रखा है और आपको कहा ये काम करो, करेंगे तो सही लेकिन इतना अच्छी तरह से नहीं कर सकोगे जब फ्री होके करेंगे। तो बुद्धि पर हमें जिम्मेदारी का बोझ नहीं रखना है, टेंशन का बोझ नहीं रखना है, सरलता को अपनाना है और बहुत लाइट नेचर रखना है, समझा। एक बात याद रखना है कर्म क्षेत्र पर, ये माया की दुनिया है, हमारी दुनिया नहीं। हमारी दुनिया सतयुग में होगी, सूक्ष्म अवतन में है, परम धाम में है, वो हमारी दुनिया है। तो यहां होगी माया से फाइट या मिलेगी फ्लाइट। अभी क्या मंजूर है भाई आपको, परम धाम की फ्लाइट चाहिए, एक सेकंड में बाबा के पास बैठना चाहते हैं या माया से फाइट करना चाहते हैं, बताओ। माया से फाइट करेंगे तो कितना नुकसान हमारा होगा, कितनी एनर्जी उसमें जाएगी, संघर्ष में हम रहेंगे तो। लेकिन फाइट न करते हुए फ्लाइट लेना है तो उसके लिए कंडीशन है डबल लाइट रहना, एक तो आत्मा लाइट और दूसरा हल्केपन की महसूसता, लाइटनेस। तो डबल लाइट होंगे तो फ्लाइट मिलेगी परम धाम की, बाबा के पास बैठ जाएंगे। फिर जब बाबा के पास बैठ जाएंगे तो शक्तियों माइट आपको मिलेगी बाबा से, जितनी माइट मिलेगी उतनी आपकी आत्मा वाइट बनेगी, प्योर बनेगी। जितनी आपकी आत्मा वाइट बनेगी उतना आपका बर्थ राइट बाबा से लेने का बढ़ता जाएगा। अब देखो ये चेन कहां से कहां गई, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, डबल लाइट स्थिति से, समझा। तो ये एक कला है, कर्म करते समय लाइट रहना, ये हल्के रहना, ये कला है। इस कला को अगर हम हासिल करना चाहे तो कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उदाहरण है, ब्रह्मा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बिजी नहीं है, है नहीं है। तो सबसे बिजी रहते हुए सबसे इजी रहकर बाबा ने कर्म योगी का सैंपल बनकर दिखाया। बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमें केवल बाबा को फॉलो करना है। ठीक है, बोझ को। और दसवीं बात है, कर्म योगी जीवन आगे बढ़ाने के लिए कर्म क्षेत्र में गुणों का दान करते रहे। जब हम बाहर जाते हैं तो कैसे जाते हैं भाई, बताओ। छज धज के जाते हैं ना, चेहरा सजाते हैं, बाल वगैरह सब कुछ मेकअप करते हैं, बाहर जाना है, सेवा में जाना है, मिलने जाना है। तो हमें भी अपने चेहरे का स्पिरिचुअल मेकअप करना है, दिव्य गुणों से अपने चेहरे को सजाना है, आत्मा को सजाना है। और दिव्य गुणों से, आभूषणों से चेहरा भरपूर होगा तो चेहरे को कोई देखेगा तो ऑटोमेटिक गुणों का दान आपके चेहरे से होगा। ज्ञानियों की सेवा हम कैसे कर सकते? ज्ञानियों को तो ज्ञान नहीं दे सकते, तो ज्ञानियों की सेवा अगर करना है हमें तो अपने सुशोभित चेहरे के द्वारा गुणों का दान हम दे सकते हैं। मुझे याद है 76 में मैं पहली बार यहां सेवादारी बनकर आया था और किचन में सेवा करता था। ये जो टेलीफोन है ना, टेलीफोन जहां चलता है वो किचन था। तो बाबा से हम हिस्ट्री हॉल में मिल रहे थे, ये हॉल भी नहीं था उस समय, बंद रहा था, वो हॉल में थे हम मिल रहे थे। 60 सेवाधारी थे, हम बाबा से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो अभी समय कम है इसलिए एक ही साथ ट्रिपल सेवा करो, तीन गुना एक ही साथ। अब तीन गुना सेवा, ट्रिपल सेवा कैसे करेंगे भाई? एक तो कर्मणा सेवा, हाथों से सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। दूसरी वाइब्रेशन के द्वारा, योग के द्वारा सेवा करेंगे। अब तीसरे के कौन सी सेवा करेंगे भाई बोलो? ज्ञान तो किसी को दे नहीं सकते, हाँ जी। बाबा ने कहा अपने दिव्य गुणों से सजे सजाए हुए चेहरे से दिव्य गुणों का दान देना, ये तीसरे प्रकार की सेवा है। थकावट भी नहीं होगी, वो दान होगा ना, गुणों का दान। हम दाता के बच्चे हैं तो हमें दान दान देते रहना है ना। तो कैसे दान करेंगे? दिव्य गुणों का दान रॉयल दान है। हम सदा हर्षित रहेंगे, हमारे चेहरे को देखने वाला हर्षित मुक्ता को ऑटोमेटिक एडॉप्ट करेगा। उदास चेहरा होगा तो उसको उदासी मिलेगी, जैसा चेहरा होगा वैसी तो बात होगी ना। तो हमें अपने चेहरे पर दिव्य गुणों सा श्रृंगार सदा रहे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है हमें बहुत अच्छी तरह से कर्म क्षेत्र में अटेंशन रखना है और कर्म और योग के साथ कर्म करते रहना है, क्योंकि इससे प्राप्तियां कितनी होती है। देखो कर्म योगी जीवन करने से डबल कमाई हमारी होती है। कर्म करने से सेवा मिलती है, दुआएं मिलती है, और योग साथ में होने से बाबा से शक्तियां मिलती है। हाँ, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है, डबल कमाई हो गई। दिव्य गुणों का दान भी हम करते रहे, साथियों का वाइब्रेशन भी हम बदलते रहे, उनको मदद भी करते रहे, अलग से बैठने के लिए योग नहीं करना पड़ता है, हम कर्म करते हुए भी योग करके और अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। जहां हम जाते हैं वहां वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते हैं, अगर योग युक्त बैठते हैं तो। बहुत ढेर सारी इसकी प्राप्तियां हैं, लेकिन हमें अमृत वेले पूरा पक्का लक्ष्य रखना है कि आज मैंने कर्म योग की स्थिति को बढ़ाना है, ठीक है। ओम शांति। अभी हम 15 मिनट पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे जरा।
क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने दिल वाला।
प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा,
चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा योगी की तरह, बूढ़े की तरह नहीं बैठना, ऐसे सीधा बैठो। ओम शांति। इस देह रूपी बंगले में इस देह रूपी महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा, ब्रह्मकोटि के अकाल तत्व पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हूं। भगवान ने मुझे राजाई लौटा दी है। पहले मैं माया का गुलाम था, अभी मैं स्वयं का राजा हूं, स्वराज अधिकारी हूं। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर शासन और नियंत्रण करने वाला आत्मा राजा हूं। पवित्रता का ताज, दिव्यता का ताज मुझ आत्मा राजा ने धारण किया है अभी अभी। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा इस शरीर रूपी महल से बाहर निकलकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर सैर पर निकला हूं। विश्व के गोले से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुका हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा राजा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस, दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों का राजा प्यारा ब्रह्मा बाबा मज फरिश्ते के समक्ष विराजमान है। राजाओं का राजा बनाने वाले शिव बाबा भी उनके ब्रह्मकुटी में विराजमान है। पाप कांपता था। मौज फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम आनंद ले रहा हूं, अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का भरपूर आनंद लेते लेते फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा पना बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो, ब्रह्म लोक में पहुंच गया हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह मेरा पीस पैलेस परम धाम। मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबरी मज आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा राजा बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से देख रहा हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रहा हूं। बाबा ज्ञान सूर्य शक्तियों की अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिविदा से बेहद शक्तिशाली किरणों की बारिश निरंतर मुझ आत्मा राजा पर हो रही होती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिविदा से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रहा हूं। इतने विशाल पीस पैलेस परमधाम में मैं आत्मा राजा राजाओं का राजा बनाने वाले शिव पिता से महामिलन का महा आनंद ले रहा हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का, वार्य में वहा मेरे बाबा वहा मेरा भाग्य, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। शक्तियों से भरपूर आत्मा राजा परमधाम रूपी पीस पैलेस से बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर उड़ता हुआ वाया सूक्ष्म वतन सौकारी दुनिया की ओर वापिस आ रहा हूं और इस साकारी दुनिया में, इस शरीर रूपी महल में, भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुका हूं। मौज शक्तिशाली आत्मा राजा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, फैलती ही जा रही हैं। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही हैं। मैं फरिश्तों की दुनिया से अवतरित फरिश्ता हूं इस कर्म क्षेत्र पर, कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूं। जो भी मैं कर्म करता हूं उसमें महानता समाई हुई है। मैं आत्मा खुदाई किदमत कार आत्मा हूं। मेरे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक अनुभव हो रही है। ओम शांति शांति शांति। ये प्यारे ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, तपो भूमि है, वरदान भूमि है, शेष महल है। बाबा ने गहन तपस्या के द्वारा इस भूमि को इतना महान बनाया जो हमारे लिए चार धाम करने के लिए बाबा ने इतनी तपस्या हमारे लिए की। एक बार तालियां बजाओ जरा।